हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर तक यहाँ वहाँ की बातें चलीं, फिर गरिमा जी ने राजेश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सही वक्त पर आए हो बेटा, आओ खाना खाओ साथ में।
नहीं आंटी, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ। असल में शादी के बाद प्रीति और आयुष्मान जी एक बार भी घर नहीं आए हैं, और रक्षाबंधन है तो मम्मी पापा ने दोनों को घर बुलाया है। मैं उन्हें लेने ही आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो दिन प्रीति वहाँ अपने परिवार के साथ रह लेगी। राजेश की बात सुनकर अवधेश जी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, इसमें इजाज़त की क्या बात है बेटा, आपकी ही बहन है, ले जाना साथ। पर अब आए हो तो हम आपको भूखे तो नहीं जाने देंगे, पहले सब खाना खाएं, फिर आयुष्मान और प्रीति बहू को साथ ले जाइएगा। राजेश उनकी बात ठुकरा नहीं पाया और सब खाने के लिए बैठ गए। प्रीति ने राजेश को भी खाना परोसा, फिर अपनी जगह आकर शांति से निवाले गले से नीचे उतारने लगी। आयुष्मान की निगाहें उसी पर टिकी रहीं। खाने के बाद राजेश गरिमा जी और अवधेश जी के साथ बैठ गया और प्रीति आयुष्मान के साथ कमरे में चली गई। सामान पैक ही था, बस कुछ चीज़ें बाहर निकाली थीं, तो प्रीति सब वापस रखने लगी। पर अब भी उसके चेहरे पर खुशी या एक्साइटमेंट जैसे भाव नहीं थे, एकदम खामोश सी। वो बिना किसी भाव के काम में जुटी रही। आयुष्मान कुछ देर तक उसे ऑब्जर्व करता रहा, फिर उसके पास चला आया और प्रीति के कंधों को थामते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया। प्रीति असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। आयुष्मान ने उसके मुरझाए हुए चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए गंभीरता से सवाल किया, क्या हुआ है प्रीति, भैया तुम्हें लेने आए हैं, वहाँ सबने तुम्हें बुलाया है, तुम इतने वक्त बाद अपने घर जाने वाली हो, पर तुम्हारे चेहरे पर न खुशी है और न ही अपने घर, अपनी फैमिली से मिलने की एक्साइटमेंट। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? जो भी बात है या प्रॉब्लम है, तुम बेझिझक मुझसे शेयर कर सकती हो। आयुष्मान ने प्रीति को विश्वास दिलाया कि वो अपनी मन की बात, दुविधा जो भी है, उसे उसके साथ बांट सकती है। प्रीति आयुष्मान की बात सुनकर कुछ पल खामोशी से उसकी आंखों में झांकती रही, फिर परेशान सी बोली, मैं वहां जाना नहीं चाहती। क्यों? आयुष्मान उसकी बात सुनकर चौंक सा गया। प्रीति की आंखों में अब नमी तैर गई। उसने रूंधे गले से कहा, उस वक्त जब मुझे अपने घर और परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सब मेरे खिलाफ थे, सबको मुझ में ही खोट नजर आ रही थी, सबने मुझे ही गुनाहगार ठहराकर सजा सुना दी थी, मुझे बोझ समझकर अपने सर से उतार फेंका था, और उनकी इज्जत पर कोई आँच न आए इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया था। हमारी शादी में भी कोई नहीं आया था, इतने वक्त में उन्होंने एक बार फोन करके मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ भी या नहीं। पर आज अचानक उनका प्यार जाग गया और उन्होंने मुझे वहाँ उस घर में बुला लिया जहाँ से उन्होंने खुद मुझे जाने को कहा था। मैं वो सब बातें भूल नहीं पाती, दर्द देती हैं वो बातें अब भी मुझे। मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती, मैं नहीं दिखावा कर सकती कि सब ठीक है। मैं नहीं जाना चाहती वहाँ जहाँ मेरे अपनों ने मुझे इज्जत किया था, मुझे इतनी गंदी बातें सुनाई थीं, मेरे बच्चे को मारने को कहा था, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। प्रीति बोलते बोलते रोने लगी। उसके शब्दों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कितनी टूटी हुई है वो, और उसके अपनों के दिए जख्म कितनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं उसे, कितना दर्द अपने सीने से दबाकर मुस्कुराती है वो। आयुष्मान ने प्रीति की बात खत्म होते ही उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आई नो प्रीति कि तुम बहुत हर्ट हुई हो, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है अपनी बातों से तुम्हें, इतना आसान नहीं सब भुलाकर सहज होना, पर अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो बात और बिगड़ जाएगी, चल कर देखो, क्या पता उस वक्त समाज और अपनी इज्जत के डर से उन्होंने जो कहा अब उन्हें उनकी बात पर पछतावा हो और वो माफ़ी मांगना चाहते हो तुमसे, अपनी गलती सुधारना चाहते हो, शायद तुम्हारे वहाँ जाने से रिश्तों में आए ये मनमुटाव खत्म हो जाए और उनके और तुम्हारे बीच सब ठीक हो जाए। वैसे भी अब कोई वजह ही नहीं कि वो तुम्हें कुछ गलत कह सकें, अब तुम उनके घर रहने नहीं बस मेहमान बनकर जा रही हो, अब तुम उनकी नहीं मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी पत्नी हो, मेरी अमानत हो, तो वो तुम्हें कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं कहेंगे। फिर उस बात को काफ़ी वक्त बीत गया है, वक्त और हालात अब बहुत बदल चुके हैं और वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। अब तुम शादीशुदा हो और अपने पति के साथ रहती हो तो कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकेगा, फिर मैं भी तो रहूंगा वहाँ तुम्हारे साथ, बस कुछ दिनों की बात है, एक दो दिन रुक कर वापस चले जाएंगे, इससे उनकी बात का मान भी रह जाएगा और इतने वक्त बाद अपने घर और परिवार के बीच जाकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। आयुष्मान ने बड़े ही प्यार से प्रीति को समझाया, फिर उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसुओं को पोंछने के बाद प्यार से उसके माथे को चूम लिया। प्रीति की पलकें झुक गईं, अब वो काफी हद तक संभल चुकी थी और शांत हो गई थी। आयुष्मान ने उसकी झुकी पलकों को देखा और मुस्कुरा कर बोला, मुझे मेरे ससुराल लेकर चलोगी? प्रीति ने सहमति में सर हिला दिया। कुछ देर बाद यहाँ से सबसे आशीर्वाद और इजाज़त लेकर दोनों राजेश के साथ निकल गए। आयुष्मान और राजेश आगे बैठे थे और पीछे बैठी प्रीति सारा वक्त बेचैनी से अपनी उंगलियों को तोड़ती मरोड़ती रही। घबराहट हो रही थी उसे वहां जाने में। शायद मन में कहीं डर बैठ चुका था कि वहां जाएगी तो फिर किसी रूप में दर्द से उसका नाता जुड़ जाएगा, फिर वो कुछ ऐसा कहेंगे जो प्रीति की खुशियों को निगल जाएगा। अब ये डर बेबुनियाद था या वहां सच में उसके लिए एक नया तूफान इंतजार कर रहा था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। रास्ता बीता और गाड़ी प्रीति के घर के सामने आकर रुकी। प्रीति ने इतने वक्त बाद अपने घर को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं, साथ ही दिल में बेचैनी सी महसूस होने लगी।